मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत में जो वर्तमान आर्थिक परिदृश्य है हमारा, इसकी शब्दावलियों की तरफ आपका कुछ ध्यान आकर्षित करूंगा। एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन की दृष्टि से, या यूं कह लीजिए कि इकोनॉमिक्स को समझने की दृष्टि से। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं, दूसरे समाचारों पर एक छोटी सी नजर मार लेते हैं। आज के अखबारों ने बहुत ही प्रोमिनेंटली एक खबर छापी है, और वो सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट की, और ये जो टिप्पणी उसने की है सोशल मीडिया के ऊपर की है। देखिए, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वेब पोर्टल आ गए हैं, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये सब सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया बाकायदे अलग से आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, आने की संभावना रहती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई टिप्पणी कर रहा है तो मुझे लगता है कि यदि कोई प्रश्न पूछा जाए इस विषय पर तो आपको एक अच्छा रेफरेंस मिल जाता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही है, और मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेक न्यूज से भरे हुए हैं, फालतू की गलत खबरों से सोशल मीडिया भरी हुई है। सोच के देखिए, सोशल मीडिया कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार क्या कर रही है, सोशल मीडिया कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीं है। इनके जरिए, अब जो बात कही गई है वो सबसे खतरनाक बात है, इनके जरिए खबरों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होती है। ये बहुत ही खतरनाक बात है हमारी सामाजिक संरचना की दृष्टि से, हमारी सामाजिक तानाबाना की दृष्टि से। यह बड़ी समस्या है, इससे देश बदनाम हो रहा है। मतलब पूरी दुनिया उन सब चीजों को देखती है, समझती है, और उसे लगता है जैसे कि भारत सांप्रदायिकता के आधार पर एकदम सुलग रहा है, बट रहा है, और जो अल्पसंख्यक हैं या जो धर्म का जो छोटा समूह है उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, इस तरह की इमेज फिर बनती है। ये कंपनियां, ये दूसरी, अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कंपनियां जजों, आम लोगों और संस्थाओं की नहीं सुनती, वे केवल ताकतवर लोगों की सुनती हैं। इसका मतलब है कि क्या सच में हिंदुस्तान में अब केवल ताकतवर लोग ही महत्वपूर्ण रह गए हैं? दोस्तों, अभी जो मैंने बात कही है, आपको चाहिए कि आप इसे नोट कर लें, खासकर जब आप निबंध लिख रहे होंगे या इस पर पूछे गए प्रश्न का आंसर दे रहे होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। यहां मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, करना चाहूंगा कह लीजिए, और वो ये है कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके जरिए, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए खबरों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है, तो क्या आप अभी कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बता सकते हैं जिसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई? मैं नहीं बता रहा हूं, इसका उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं। दो दिन का वक्त आपके पास है, आप इस पर सोचें, और यदि आपको उत्तर मिल जाए तो चाहें तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं कि सर यह खबर थी जिसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन एक खबर छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की खबर होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी जो खबर है वो अमेरिका में आए हुए तूफान की है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आज विस्तार के साथ दिया हुआ भी है, कि अमेरिका में जो न्यूयॉर्क, खासकर उसका जो स्टर्न पार्ट है, वहां एक जबरदस्त चक्रवाती तूफान आया है, और उसका नाम है ईडा, IDA, चक्रवाती तूफान, और उसने भयानक तबाही मचा दी है। कहा जाता है कि न्यूयॉर्क में 400 साल से इस तरह की वर्षा नहीं हुई थी, पूरे सबवे भर गए हैं, आपातकाल लगा दिया गया है। किस तरीके से जो खासकर मौसम में परिवर्तन हो रहा है उसका दुष्प्रभाव पूरी दुनिया देख रही है, यह इसका प्रमाण है। और खासकर यहां भी मैं आपको एक रेफरेंस बताना चाहूंगा, और वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है, विश्व मौसम संगठन, उसने अभी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, कि पिछले 50 वर्षों में दुनिया में मौसम जनित आपदाओं की संख्या 5 गुना बढ़ी है। मौसम जनित कहने का मतलब है कि जो मौसम में परिवर्तन के कारण जो आपदाएं पैदा हो रही हैं, उदाहरण के तौर पर चक्रवाती तूफान जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, अकाल पड़ जाता है, बिल्कुल सूखा, जंगलों में आग लग जाती है, ये सब के सब बकायदे, इन्हें आप जो हमारी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, कह लीजिए जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण उत्पन्न प्राकृतिक आपदाएं हैं कह सकते हैं। और आपको मालूम है कि भारत भी इसका उतना ही शिकार है। यहां फ्रेंड्स मैं एक बिन मांगी सलाह आप सबको देना चाहूंगा कि अगर आपके अखबार में ये खासकर अमेरिका में जो अभी चक्रवाती तूफान आया है इसकी खबर विस्तार से दी हुई हो तो आप एक काम कीजिए, प्लीज कीजिए ये कि आप बकायदे अमेरिका का नक्शा रख लीजिए, अमेरिका का नक्शा रखिए और इसके बाद इस खबर को पढ़िए। क्योंकि देखिए खबर किस तरीके से होगी कि यहां आया तो अमेरिका का जो पूर्वी भाग है ये परेशान हो रहा है और इसके बाद चक्रवात धीरे धीरे उत्तरी भाग की ओर बढ़ रहा है, इस तरह की शब्दावलियां आपको पढ़ने को मिलेंगी, वाक्य मिलेंगे। आप पढ़ गए, आप भूल गए, बात खत्म हो गई। और सच पूछे तो हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह का कोई प्रश्न सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा भी जाएगा। लेकिन इससे होता क्या है, देखिए होता यह है कि आपकी जो कैपेसिटी है वो बिल्डअप होती है। जैसे आप अगर नक्शा खोलेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि भाई अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वहां कौन सा समुद्र है, इसके बाद जो पश्चिमी भाग है वो कौन सा वहां क्या सागर है, उसका दक्षिणी भाग है दक्षिणी भाग में क्या कोई सागर है, कौन से देश हैं, इसके बाद जो उत्तरी भाग है उत्तरी भाग किससे सटा हुआ है, ये किस अक्षांश पर स्थित है, क्योंकि अक्षांशों का बहुत ज्यादा प्रभाव आप जानते हैं कि मौसम पर पड़ता है। तो ये सारी बातें आपको वहां देखने जानने और समझने को मिलेंगी और इससे अनचाहे ही आपके सबकॉन्शियस लेवल पर आप यूं कह लीजिए कि जो ज्योग्राफी है उसका रिविजन होता चला जाएगा, रिविजन होता चला जाएगा। मैंने कहा अनचाहे ही, बिना चाहे ही ऐसा होता चला जाएगा और फिर ये आपको एग्जामिनेशन में इतना पावरफुल बना देता है, आपकी दृष्टि को इतनी साफ कर देता है, स्पष्ट कर देता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप चाहें तो ऐसा करके मेरे इस सलाह को आजमा सकते हैं और अगर आपको फायदा होता है तो आप आगे करें, नहीं तो मत करें। फ्रेंड्स अभी अफगानिस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं इसमें 3-4 शब्द आ रहे हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा ताकि इस पूरे के पूरे इवेंट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। 3 शब्दों के बारे में मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक आपने नाम सुना पंजशीर, पंजशीर है ना, पंजशीर पर अभी भी तालिबान कब्जा नहीं कर पाया, उसका जबरदस्त विरोध हो रहा है तालिबान का। पंजशीर बेसिकली और कुछ नहीं, अफगानिस्तान के जो राज्य हैं जिन्हें उपप्रांत कहते हैं, 34 प्रांत है, 34 प्रांत है, उसका एक प्रांत है पंजशीर, घाटी भी है, यहां पंजशीर नाम की घाटी भी है। यह अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व पार्ट में है और यहां की आबादी केवल 2.25 लाख के लगभग की है और गांव भी लगभग 500 है और यहां के लोग पूरी शक्ति के साथ तालिबानियों का विरोध कर रहे हैं। तालिबान अभी इस प्रांत पर कब्जा नहीं कर पाए हैं, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एक शब्द आप बार बार सुन रहे होंगे, हक्कानी नेटवर्क, हक्कानी नेटवर्क। ये हक्कानी नेटवर्क क्या है, बेसिकली हक्कानी सरनेम है, उन्होंने स्थापना की थी। ये भी अफगानिस्तान का खासकर एक जो गुरिल्ला उग्रवादी संगठन होता है, गुरिल्ला जिसे हम हिंदी में कहते हैं छापामार पद्धति से युद्ध करना या अपनी बातों को मनवाना, तो गुरिल्ला उग्रवादी संगठन है और आप कह सकते हैं कि ये तालिबान का ही एक छोटा रूप है, हक्कानी नेटवर्क। ठीक है, एक शब्द आपने बकायदे अलकायदा का भी पढ़ा होगा और अलकायदा देखिए, जबकि तालिबान कह रहा है कि कश्मीर भारत का मामला है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये हमारी नीति का हिस्सा है, लेकिन अलकायदा कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम कश्मीर के मुद्दे को उठाएंगे। तो ये अलकायदा क्या है। ओसामा बिन लादेन का नाम आपने सुना है, ओसामा बिन लादेन और कुछ लोगों ने मिलकर के इस अलकायदा संगठन की स्थापना की थी। यह भी उग्रवादी संगठन, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सुन्नी इस्लामिक उग्रवादी संगठन आप इसे कह सकते हैं। खासकर जब जो अफगानिस्तान था सोवियत रूस के विरुद्ध जब युद्ध कर रहा था, आप कह लीजिए कि उस समय इसकी स्थापना खासकर रूस के विरोध के लिए की गई थी और ये कई देशों में ऑपरेट होता है अलकायदा। तो मुझे लगा कि ये 3 शब्द अभी जो बार बार न्यूज में आ रहे हैं इनके बारे में आपकी जानकारी बहुत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि आप इनके स्टैंड को समझ सके। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं जो अभी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर हमारी एक रिपोर्ट सी आई है, 3 महीने की रिपोर्ट। मैं उसके बहुत डिटेल में जाने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि वक्त इतना नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो इकोनॉमी है और जो इकोनॉमिक्स है ये आपके प्री एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आप सोच करके देखिए कि मिनिमम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एवरेज 16 हैं और मैक्सिमम 25 तक पूछे गए हैं, 100 में 25, कैन यू इमेजिन। इसलिए इस विषय पर कम से कम आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि इस पर एक यूट्यूब में हम लोगों ने प्रोग्राम प्रोवाइड किया है कि प्री एग्जामिनेशन में आप इकोनॉमिक्स की कैसे तैयारी करेंगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। तो अगर आपने उसे एक सुन लिया हो और उसके आधार पर कर रहे हो तैयारी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो मैं चाहूंगा कि आप उसे ध्यान से सुने और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लें और फिर उस पर काम भी करें। जैसे अभी जो अर्थव्यवस्था की बात कही गई कि 3 महीनों में हमने कितनी ग्रोथ हासिल की है, तो आप देखिए कि जब आप अखबार पढ़ रहे होंगे तो आपको उसमें कुछ शब्द पढ़ने को मिलेंगे। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि अभी हमारी जो पहली तिमाही हुई अप्रैल से शुरू हो गया, अप्रैल मई जून ये हमारी पहली तिमाही हुई, तो ये जो पहली तिमाही है 3 माह, इसमें हमने जो ग्रोथ रेट हासिल की है जीडीपी का वो 20.1 है। विकास दर है हमारी जीडीपी की 20.1। आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये 20.1 किसके तुलना में है, क्या ठीक उससे पहले के 3 महीने की तुलना में है या किसकी तुलना में है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, ये पिछले साल में जो ये पहली तिमाही थी उसकी तुलना में है। तो एक शब्द फिर आपको हो सकता है कि न्यूज में पढ़ने को मिले, वो है बेस इफेक्ट। अब ये बेस इफेक्ट शब्द आ गया, हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि ये बेस इफेक्ट क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेस इफेक्ट क्या होता है। ठीक इसी तरह से बहुत सारे आपको दूसरे शब्द मिलेंगे कि कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसके बाद फिर आपको वी शेप रिकवरी है, वी शेप रिकवरी क्या होती है, जो निजी मांग बढ़ रही है तो निजी मांग क्या होती है, पूंजीगत व्यय क्या होता है। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं, ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, एनालिटिकल तरीके से मालूम होना चाहिए, और यह भी मालूम होना चाहिए कि इनका टोटल इंपैक्ट क्या होता है। तो दोस्तों बस ये थोड़ी सी बातें मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बतानी थी। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने से पहले आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।